بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है, और कुफ्र, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9890350654 92। दोस्तों, आज सोमवार है, आबान की 28 और नवंबर की 19 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के चौथे महीने रबीउसानी की 24 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे, उसके बाद आपकी सेवा में कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा, और उसके बाद आपकी सेवा में पेश किया जाएगा कार्यक्रम ईरान भ्रमण, और आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जाएगा वो होगा उज्जवल भविष्य। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी और मरियम मेहरदादी से सुनेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान में हालिया दिनों में होने वाले दंगों पर सुप्रीम लीडर का बयान, हंगामों की बिसात यकीनन समेट दी जाएगी। ईरान में होने वाले आतंकी हमलों पर पश्चिमी देशों की चुप्पी, आतंकवाद के फलने फूलने का कारण ईरानी विदेश मंत्रालय। परमाणु समझौते में अमेरिका रुकावट पैदा कर रहा है रूस। अफगानिस्तान को आतंकियों का सुरक्षित स्थल नहीं बनने देना चाहिए भारत। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने कहा है कि दंगों के सूत्रधारों का लक्ष्य जनता को मैदान में लाना था। उन्होंने कहा कि दंगों की बिसात यकीनन समेट दी जाएगी और ईरानी जनता ज्यादा ताकतवर बनकर और अधिक जोश व खरोश के साथ तरक्की के मैदान में आगे बढ़ेगी। शनिवार को इस्फहान से आए हुए समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को संबोधित करते हुए इस्लामी क्रांति के नेता ने कहा कि ये घटनाएं, आपराधिक गतिविधियां और विध्वंस, इनसे जनता और कारोबारियों के लिए कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं, मगर दंगों के लिए मैदान में आने वाले और उन्हें दिशा निर्देश देने वाले सारे तत्वों की इतनी औकात नहीं है कि इस्लामी लोकतांत्रिक सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचा सकें। इस्लामी क्रांति के नेता ने कहा कि विश्व साम्राज्यवाद और अमेरिका को इस्लामी गणराज ईरान से ये तकलीफ है कि अगर ये सिस्टम तरक्की करता है और दुनिया में नाम कमाता है तो पश्चिम की लिबरल डेमोक्रेसी का नज़रिया ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। वरिष्ठ नेता का कहना था कि इसी तिलमिलाहट और आक्रोश में अमरीकी और यूरोपीय अपने सारे संसाधनों के साथ मैदान में उतरते हैं, मगर अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। जिस तरह इससे पहले कुछ नहीं कर पाए, आइंदा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस्लामी क्रांति के नेता ने आज़ादी और लोकतंत्र के नाम पर किए जाने वाले پشمی دیشوں کے ڈھونگ کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرکاریں آزادی اور لوکتندر کے نام پر دوسرے دیشوں میں ہستکشیپ کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان بالکل قریب کی اور اسپشٹ مثال ہے جہاں امریکیوں نے لوکتندر نہ ہونے کے بہانے حملہ کیا، مگر 20 سال تک اپرادھ اور لوٹ مار کرنے کے بعد اسی سرکار کو سپتا سونپ کر بے عزتی سے نکل گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا کہنا تھا کہ ایران اور سامراجواد کی لڑائی میں امریکہ فرنٹ لائن پر کھڑا ہے اور یورپ امریکہ کے پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی کرانتی کے بعد کے ورشوں میں کارٹر، کلنٹن، ڈیموکریٹ، اوباما، اسی طرح ریگن، بش اور اس ہلکے دماغ کے پر راشپتی اور موجودہ بے ہوش و حواس راشپتی تب سب کا ایران کی جنتا کو نجات دلانے کے لیے تھے، لیکن سب نے اسلامی گڑراج ایران کے خلاف مورچہ کھولا اور اپنے پالتو کتے اسرائیل اور علاقے کے کچھ دیشوں سہت جس سے بھی ممکن ہوا مدد لی۔ اسلامی کرانتی کے نیتا نے کہا کہ خطروں کو اوسروں میں بدل دینا ایمان رکھنے والی قوم کا سوبھاؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوتر پرتیرکشا کے دوران خطروں کو اوسروں میں بدلنے کی ایرانی جنتا کی مہارت کا نتیجہ آج یہ ہے کہ دشمن جب بھی ایران کے خلاف سینک وکلپ استعمال کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ ایرانی جنتا کو تو ہرانا سمبھو نہیں ہے، جیسا کہ امریکیوں اور دوسرے ورودھیوں کو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ آنا آپ کی مرضی سے ہوگا مگر واپسی ہماری آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی، حملے کی استھتی میں آپ کو مٹا دیا جائے گا۔ مہارت کا نتیجہ آج یہ ہے کہ دشمن جب بھی ایران کے خلاف سینک وکلپ استعمال کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہیں فوراً یہ بات یاد آ جاتی ہے۔
حالیہ دنوں میں ایران میں ہونے والے دنگوں اور آتنکوادی حملوں پر جس طرح سے امریکہ سمیت پشچمی دیشوں کا رویہ رہا ہے، اس نے ان دیشوں کے اصلی چہروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ پراپ رپورٹ کے مطابق اسلامی گنراج ایران کے ودیش منترالے دوارا جاری کیے گئے بیان میں ایزے اسوان اور مشہد جیسے شہروں میں ہوئی آتنکی گھٹناؤں کی نندا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نسندے ایران کے کچھ شہروں میں آتنکوادی گھٹنائیں ہوئی ہیں جس کے بارے میں سب کو جانکاری بھی ہے۔ وہیں ایران میں اراجکتا اور اشانتی پیدا کرنے اور دنگوں کو بڑھاوا دینے والی ودیشی شکتیوں کی سوچی سمجھی چپی سے نہ کیول آتنکوادیوں کا منوبل بڑھ رہا ہے بلکہ اس سے دنیا بھر میں آتنکواد کو بڑھاوا بھی ملے گا۔ بتا دیں کہ 16 نومبر کو دکشنی ایران کے خوزستان پرانت کے ایزے شہر میں موٹر سائیکل پر سوار دو آتنکوادیوں نے عام نگرکوں پر اندھا دھند گولیاں چلا دی تھیں، جس میں ایک بچے سمیت 7 لوگ شہید ہو گئے اور 10 انیہ گھائل ہو گئے تھے۔ اسی دن ایران کے اسوان پرانت میں بھی 2 موٹر سائیکل سواروں نے اسی انداز میں گولیاں چلائی، جس میں 2 سرکشا کرمی شہید اور 1 گھائل ہو گئے۔ آتنکوادی تتووں نے اسی دن پوتر نگر مشہد میں بھی سوئنسوئی فورس کے 2 جوانوں کو بھی شہید کر دیا تھا۔
سماچار پتر واشنگٹن پوسٹ کے پردھان سمپادک اور پرکاشک نے جمال خاشقجی معاملے میں سعودی عرب کی یوراج کو کلین کی چٹ دیے جانے کے کارن امریکی سرکار کی کڑی آلوچنا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بائیڈن نے سعودی راجکمار کو ہتیا کرنے کا لائسنس دے دیا ہے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق واشنگٹن پوسٹ کے پترکار جمال خاشقجی جو ورجینیا میں رہتے تھے، ورش 2018 میں استانبول میں استھت سعودی عرب کے دوتاواس میں ان کی ہتیا ہو گئی تھی۔ ان کی ہتیا کی ہوئی جانچ کے بعد امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں اس نتیجے پر پہنچی کہ سعودی مول کے اس پترکار کی ہتیا محمد بن سلمان کے آدیش سے ہوئی ہے، لیکن سعودی عرب کی یوراج نے اس ہتیا میں خود کے شامل ہونے کے دعووں سے انکار کیا۔ اس بیچ واشنگٹن پوسٹ کے سمپادک ایوم پرکاشک فریڈ ریان نے شکروار کو ایک لیکھ میں امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن کے فیصلے کی نندا کرتے ہوئے لکھا کہ جو بائیڈن امریکی مولیوں کو سنرکشت کرنے میں وفل رہے اور دنیا میں مانو ادھیکاروں کے گھور الگھن کرتاؤں میں سے ایک کو مارنے کے لیے ہری جھنڈی دے دی۔ वाशिंगटन पोस्ट के संपादक के अनुसार इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी देश को अपने प्रमुखों पर लगने वाले निराधार आरोपों का बचाव करना चाहिए, लेकिन जब किसी का गुनाह साबित हो जाए और वो भी एक हत्या में, तो ऐसी स्थिति में वो कोई भी हो, चाहे सऊदी अरब का युवराज और प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको बचाना शर्म की बात है।
ईरान ने अमरीकी आतंकवादी सेना के फिफ्थ फ्लीट के प्रवक्ता के उस दावे को सरासर झूठ करार दिया है जिसमें कहा गया था कि ईरान ने यमन को रॉकेट फ्यूल दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से एसोसिएटेड प्रेस के नाम जारी एक पत्र में अमरीकी सेना के इस दावे को रद्द कर दिया गया। पिछले मंगलवार को अमरीकी सेना के पांचवें समुद्री बेड़े के प्रवक्ता ने दावा किया था कि ईरान ने सना को 70 टन रॉकेट फ्यूल दिया है। इस निराधार दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के प्रतिनिधि कार्यालय ने बल देकर कहा है कि ईरान संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2216 पर प्रतिबद्ध है, जिसके अंतर्गत यमन की ओर हथियार भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ईरान के वित्त मंत्री ने ईरान और हंगरी के बीच व्यापारिक लेन देन में 55% वृद्धि की घोषणा की है। ईरान और हंगरी के बीच आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र के प्रोटोकॉल दस्तावेज पर ईरान के वित्त मंत्री सैयद एहसान खानदोजी और हंगरी के विदेश मामलों के मंत्री पीटर सियारतो ने हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने संयुक्त आर्थिक सहयोग के आयोग की दूसरी और तीसरी बैठकों के बीच ईरान और हंगरी के बीच व्यापारिक लेन देन में 55% की वृद्धि पर जोर दिया, जिससे इस आयोग के महत्व का पता चलता है। दोनों देशों ने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते किए और निकट भविष्य में कृषि, पशु स्वास्थ्य और जड़ी बूटियों के क्षेत्र में 3 सहयोग पत्रों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया।
लंदन में मौजूद शोधकर्ताओं और शाही व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने वाले बहरेनी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में बहरेन में हुए दिखावटी चुनाव की वास्तविकता को उजागर किया है। साथ ही लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति ब्रिटिश सरकार के दोहरे रवैये की निंदा की है। समाचार एजेंसी ईरान प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बहरेन में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी की वरिष्ठ शोधकर्ता सुश्री जोसी थम ने नकली राजनीतिक प्रक्रिया के शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहरेन में हुए हालिया चुनाव पूरी तरह से दिखावटी थे।
इसराइल में अचानक कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं। तेल अबीब के करीब भीषण धमाका हो गया है। जमीनी मीडिया का कहना है कि तेल अबीब के करीब शोरोन नाम के इलाके में धमाका हुआ, जिसकी आवाज बहुत दूर तक सुनी गई।
सीरिया के क्षेत्र इदली में मौजूद 800 आतंकियों को, जिनमें दाइश के आतंकी भी शामिल है, रूस से जंग के लिए यूक्रेन भेजा जा रहा है। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने सीरिया के इदलिब प्रांत के स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि बहुत से आतंकियों को पिछले 2 सप्ताह के दौरान 2 चरणों में यूक्रेन भेजा जा चुका है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूत आर मधुसूदन ने कहा है कि अफगानिस्तान को आतंकवाद के फलने फूलने के स्थान में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा फिर से सत्ता में लौटने के बाद भारत सरकार ने इस देश में आतंकवादी समूहों की गतिविधियों के बढ़ने के संभावित खतरे के बारे में कई बार चेतावनी दी है। लगभग 2 महीने पहले भारतीय विदेश मंत्री ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों की उपस्थिति क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों पर रूस की पहल पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एरिया फार्मूला बैठक में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूत आर मधुसूदन ने कहा कि तालिबान के सत्ता में आने से पहले भारत अफगानिस्तान में विकास, पुनर्निर्माण और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से $3 अरब से अधिक की लागत की प्रतिबद्धता के साथ परियोजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा था।
वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल ओलियानोव ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ईरानी विरोधी प्रस्ताव को बेहद असामयिक बताया है। ایرنا کی رپورٹ کے انوسار میخائل الیانوف نے شکر رات روس کے 24 ٹی وی چینل کے ساتھ ایک ساکشاتکار میں کہا کہ پشچمی دیش ایران کے پرمانو سمجھوتے کی بحالی پر بات چیت جاری رکھنے میں سمسیا پیدا کرنے کے لیے انتراشٹری پرمانو ارجا ایجنسی کا اپیوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بورڈ آف گورنرس میں ایرانی ویرودھی پرستاؤ پیش کرنے کو جے سی پی او اے وارتائے میں ایک سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے امریکی سرکار کی نرنتر بادھائیں قرار دیا۔
اسی کے ساتھ راشٹریہ اور انتراشٹریہ سماچار ریڈیو تہران سے سماپت ہوتے ہیں۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، کاریکرم راجنیتک چرچا لے کر میں سید میسم آپ کی سیوا میں حاضر ہوں۔ آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کی بیٹھک میں روس اور چین نے ایران ویرودھی پرستاؤ کا ویروھ کیا ہے۔ جائزہ لے رہے ہیں قائم رضوی۔
آئی اے ای اے کی کاریکاری بورڈ کی بیٹھک میں ایران ویرودھی پرستاؤ کا چین اور روس نے ویروھ کیا ہے۔ آئی اے ای اے کے کاریکاری بورڈ نے امریکہ اور تین پشچیمی دیشوں دوارا لائے گئے پرستاؤ کو پارت کیا، جس میں ایران پر انتراشٹری پرمانو ارجا ایجنسی کے ساتھ آوشک سہیوگ نہ کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے۔ آئی اے ای اے میں روس کے وشیش پرتندھی نے اس پرستاؤ کو غیر رچناتمک بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس غیر رچناتمک پرستاؤ کو پیش کرنے والوں کی نیت کو الگ رکھتے ہوئے اس نے جے سی پی او اے کے بارے میں وارتا کو ادھک جٹل بنا دیا ہے۔ یہی کارن ہے کہ روس نے اس کا کھل کر ویروھ کیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ، برٹن، فرانس اور جرمنی دوارا پیش کیے گئے پرستاؤ کے خلاف چین نے بھی متدان کیا، ایران نے تو اس کو سرے سے ہی خارج کر دیا۔ ایران کے ورد اس پرستاؤ کے بارے میں وارتا تو اسی سمے سے آرمبھ ہو چکی تھی جب آئی اے ای اے کے مہانشک نے ایران کے ساتھ متبھید سماپت نہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس پرستاؤ میں تین اگھوشت استھانوں پر پرمانو پدارتھ پائے جانے کے دعوے کو دہرایا گیا ہے۔ پرستاؤ میں ایران سے اس کی تتکالین سمیکشا کی مانگ کی گئی ہے۔ یہ قدم ایسی استھتی میں اٹھایا گیا ہے کہ تہران اس بات پر سہمتی جتا چکا ہے کہ آئی اے ای اے کے نریکشک ایران کی یاترا کے دوران پرمانو سائٹ کا نریکشن کر کے ایجنسی کے کتھنانوسار تین اگھوشت استھانوں پر پائے جانے والے پرمانو پدارتھوں کے سمبندھ میں جانچ کر سکتے ہیں۔ ایران کی پرمانو گتیویدھیوں کے بارے میں آئی اے ای اے کے مہانشک وہ دعوے کر رہے ہیں جن کو پہلے اویدھ زائونی شاسن کے پورو پردھان منتری نتنیاہو نے پیش کیا تھا۔ نتنیاہو کے دعوے کے بعد اس کو سنچار مادھیموں میں پیش کیا جانے لگا تھا۔ اسلامی گڑتنت ایران نے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کی بیٹھک میں پارت پرستاؤ میں کیے جانے والے دعووں کو رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایجنسی کو ان مدوں کو آدھار بنا کر کوئی پرستاؤ پاس نہیں کرنا چاہیے جن کو وشیش راجنیتک ہتوں کی پورتی کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ ایران کی اور سے سدبھاونا دکھائے جانے کے باوجود پشچم آئی اے ای اے کے پرستاؤ کو ایران پر دباؤ بنانے کے ہتھکنڈے کے روپ میں پریوگ کرنا چاہتا ہے۔ آئی اے ای اے میں ایران کے راجدوت محسن نظیری اصل نے کہا ہے کہ ایجنسی کے گھوشنا پتر کے آدھار پر شانتی ایوم سرکشا استھاپت کرنے میں انتراشٹری استر پر سہیوگ کے استھان پر آئی اے ای اے ایک گڑھے ہوئے مدے کی سمیکشا میں ویست ہے۔ कुछ जानकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान विरोधी प्रस्ताव को लाने वाले देशों द्वारा ईरान में दंगे भड़काकर तेहरान पर दबाव बनाने की साजिश में विफलता के बाद IAEA में ईरान विरोधी प्रस्ताव पेश किया गया है। IAEA में ईरान के राजदूत मोहसिन नजीरी असल ने कहा है कि ये प्रस्ताव उस सहयोग को बाधित करेगा जो उनका देश लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस प्रस्ताव से कुछ हासिल नहीं होगा। इस प्रस्ताव को ईरानी राष्ट्र के खिलाफ अधिक प्रतिबंध लगाने के बहाने के रूप में पारित किया गया है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
सऊदी अरब में मौत की सजा पाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
विश्व शक्तियों और विश्व समुदाय की खामोशी के साए में सऊदी अरब विभिन्न बहानों से सजाए मौत देने का क्रम जारी रखे हुए है और अब तक सजाए मौत पाने वालों की संख्या पिछले साल से दोगुनी हो चुकी है। दो और लोगों की सजाए मौत से सऊदी अरब में 2022 में सजाए मौत पाने वालों की संख्या बढ़कर 138 तक पहुंच गई है, जबकि इस देश में पिछले साल 69 लोगों को सजाए मौत दी गई थी। 2022 में 2020 की तुलना में सजाए मौत की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। 2020 में सऊदी अरब में फैले कोरोना के कारण केवल 27 लोगों को सजाए मौत दी गई थी। सऊदी अरब में सजाए मौत के लिए विभिन्न बहाने पेश किए जाते हैं। कुछ सजाए मौत अपराधों की वजह से होती हैं। मिसाल के तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी को एक अपराध माना जाता है और ऐसा अपराध करने वालों को मौत की सजा दी जाती है। पिछले दिन सऊदी अरब में नशीले पदार्थों की तस्करी के अपराध में 2 लोगों को मौत की सजा दी गई। पिछले हफ्ते भी सऊदी अरब में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए 2 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। इन 4 लोगों में 3 सऊदी नागरिक नहीं थे। सऊदी अरब में सजाए मौत की सबसे अहम वजह राजनीतिक मुद्दे हैं। जब से किंग सलमान और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान सत्ता में आए हैं, तब से सजाए मौत के लिए राजनीतिक बहाने बढ़ गए हैं। यूरोपीय सऊदी मानवाधिकार संगठन के उपाध्यक्ष आदिल असईद ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि जनवरी 2015 से सलमान और उनके बेटे मोहम्मद ने 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि पीड़ितों में से किसी को भी न्याय नहीं दिया गया। यहां तक कि उनमें से दर्जनों ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने क्रूर यातनाओं की वजह से अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है। अभी पिछले मार्च के महीने में ही सऊदी अरब ने आतंकवाद से जुड़े आरोपों में एक दिन में 81 लोगों को मौत की सजा दी थी। सऊदी अधिकारियों ने उस समय दावा किया था कि मारे गए कैदी उन मामलों में शामिल थे जिन्हें उनके अनुसार आतंकवाद के रूप में वर्णित किया गया था। ये दावे तब किए गए जब सऊदी सरकार ने कभी भी इन लोगों के आतंकवादी गुटों के साथ सहयोग का संकेत देने वाले किसी भी दस्तावेज को जारी नहीं किया। दूसरी ओर सऊदी सरकार अपना विरोध करने वाले किसी भी गुट को आतंकवादी मानती है, जो सजाए मौत की राजनीतिक प्रकृति को दर्शाता है। सऊदी अरब में आतंकवादी कहे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक गुटों में से एक मुस्लिम ब्रदरहुड है। इसके अलावा आले सऊद उन गुटों को भी आतंकवादी मानता है जो इस देश के पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं, जहां बहुसंख्यक शिया समुदाय के लोग बसते हैं। आले सऊद प्रशासन बड़ी संख्या में इन गुटों के सदस्यों को मौत की सजा सुना चुका है।
और अब रुख करते हैं भारत का। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और केंद्र सरकार कश्मीर में शांति की स्थापना में नाकाम रही है। ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से सिप्त हसन।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और पार्लियामेंट के सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनका दल नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए तैयार है और जब ये अनाउंस करेंगे हम भरपूर तरीके से उसमें भाग लेंगे। जम्मू में अपनी पार्टी की तरफ से एक समारोह के बीच पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने नई दिल्ली पर तीखे वार करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने पिछले 3 वर्षों से वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे, परंतु जमीनी स्तर पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जब तक गले से नहीं लगाया जाएगा तब तक यहाँ पर शांति आ ही नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि शांति के हवाले से बड़े बड़े वादे किए गए परंतु वो सच साबित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट हैं और वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस रजीम को एक भरपूर जवाब देंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस अवसर पर कहा कि जम्मू में अब बहुत सारे लोग उनके दल से जुड़ रहे हैं। ये ऐसे संकेत हैं कि अब नई दिल्ली को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी भी अन्य मजहब से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति, वो जम्मू कश्मीर में एकजुट अपनी जिंदगी गुजार रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा यह मानना है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए फौरी तौर पर राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाना चाहिए और जो हमारे विशेष अख्तियार छीने गए हैं उससे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल छलनी हुए हैं जिसे वो कभी भी दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष अख्तियार की वापसी के लिए वो अपना अभियान जारी रखेंगे। इस बीच उन्होंने कहा,
हम लोग तैयार हैं, इलेक्शन अनाउंस कर दे, हम लोग सब तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आप जानती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम किया है। जब 96 में हम आए कौन था यहाँ, हर तरफ बंदूकें चलती थी, गोले चलते थे। हम लोगों ने उस वक्त इस जमात को संभाला, इस रियासत को संभाला, तब ये रियासत थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
इधर जम्मू कश्मीर के अन्य मेन स्ट्रीम दलों ने भी कहा है कि नई दिल्ली बार बार ये तो कह रही है कि यहाँ पर चुनाव होंगे परंतु कोई डेट अनाउंस नहीं किया जाता है और हम नई दिल्ली से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव डेट अनाउंस करें। सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप अभी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा हमारे साथ ही सैयद मीसम से सुन रहे थे। अब आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है कार्यक्रम ईरान ब्राह्मण।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की अगली कड़ी में हम रोबात करीम नगर के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
मित्रों, आज हम तेहरान प्रांत के एक अन्य नगर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ईरान एक ऐसा देश है जो अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण पहाड़ों, जंगलों, चरागाहों, नदियों, झरनों, राष्ट्रीय उद्यानों और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों से संपन्न है। दूसरी ओर संस्कृति, सभ्यता और वास्तुकला की दृष्टि से इस भूमि की प्राचीनता ने इसे विशेष समृद्धि प्रदान कर दी है। इस समय तेहरान की आबादी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। सुंदर मैदानी इलाके, अधिक आबादी और शोर शराबे वाले इस शहर का आकर्षण भी इन्हीं चीजों में निहित है। यही कारण है कि जब भी कोई पर्यटक तेहरान की यात्रा करता है तो वो यादगार के रूप में तेहरान के निकटवर्ती इलाकों का उल्लेख जरूर करता है।
दोस्तों, राजधानी तेहरान के निकट कई नगर और जनपद बसे हुए हैं। यह अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए भी मशहूर है। राजधानी तेहरान से बिल्कुल सटा हुआ एक छोटा किंतु आकर्षक नगर है। तेहरान के पश्चिम में स्थित इस नगर का नाम है रोबात करीम। यह छोटा सा नगर हरे भरे मैदानों में है, जहां पर अंगूर की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है। इस नगर में अंगूर के बहुत से बाग पाए जाते हैं और यहां पर अति प्राचीन काल से लोग रहते आए हैं।
रोबात करीम नगर इतिहास में एक गुजर स्थल के रूप में भी मशहूर रहा है। इस नगर के पश्चिम में कज़वीन मरुस्थल है। रोबात करीम के पूर्व में प्राचीन रेई क्षेत्र स्थित है। पुरातत्वविदों की खोज से ये पता चलता है कि यह नगर लगभग 6 या 7 हजार वर्ष पुराना है। इस बात की पुष्टि वहां पर खुदाई में निकली चीजें भी करती हैं। रोबात करीम में कुछ ऐसी प्राचीन इमारतें मिली हैं जिनका संबंध 2 शताब्दी ईसा पूर्व से बताया जाता है। इन सारी बातों से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि तेहरान के निकट स्थित रोबात करीम नगर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही प्राचीन है।
काजार शासनकाल में तेहरान की राजधानी बनने से पहले रोबात करीम प्राचीन रे का हिस्सा हुआ करता था। उस समय इसको कूहे कहा जाता था। इस काल के लोग कूहे में प्राचीन फारसी का प्रयोग किया करते थे। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की परंपराओं का चलन था। इस नगर की प्राचीन परंपराओं में से एक समनुपजान है और यह एक प्रकार का हलवा है जो गेहूं को अंकुरित करने के बाद उससे बनाया जाता है। उस काल में वहां के लिए अपनी मन्नतों के लिए इस परंपरा का आयोजन करते थे।
वसंत के मौसम में नव वर्ष के 15 दिन गुजर जाने के बाद समनुपजान का आयोजन किया जाता था। इस दौरान यहाँ के अधिकांश घरों में ये विशेष हलवा बनाया जाता था, जिसको बाद में सुबह के समय में लोगों को बांटा जाता था। समनु नामक हलवे को पकाकर उसको लोगों के बीच वितरित करने की परंपरा आज भी ईरान के बहुत से भागों में प्रचलित है।
रोबात करीम नगर की एक विशेषता यह है कि वह प्राचीन काल में सिल्क रोड के किनारे बसा हुआ था। उस काल में सिल्क रोड व्यापारियों और यात्रियों के आवागमन का बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता था। बड़ी संख्या में लोग सिल्क रोड को प्रयोग करते थे। प्राचीन खुरासान से बगदाद जाने वाली यात्रा भी सिल्क रोड से ही होकर किया करते थे। शायद यही वजह है कि रोबात करीम के निकट बहुत सी धर्मशालाएं बनवाई गई हैं, जिनको कारवान सरा कहते हैं। प्राचीन काल में सामान्यतः उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में धर्मशालाएं या कारवानसराएं बनाई जाती थी जहां रास्ते बने होते थे। लोग वहां से गुजरा करते थे। इन धर्मशालाओं में लोग रुककर कुछ समय विश्राम करते हैं और अपनी थकान मिटाकर आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। इन धर्मशालाओं में से कुछ बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक थी। उन्हीं में से एक किलानसंगी है, जबकि दूसरी का नाम फतह अली शाही है।
वर्तमान समय में किला संगी नामक धर्मशाला तेहरान सावे हाईवे के निकट स्थित है। ये एक विशाल धर्मशाला है जो बहुत दूर से दिखाई देती है। कहते हैं कि ईरान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली धर्मशालाओं में किला संगी सबसे प्राचीन धर्मशाला है। इसको लगभग 1000 साल पहले बनवाया गया था। शोधकर्ताओं का ये कहना है कि किला संगी धर्मशाला को बनाने में बहुत अधिक समय लग गया था। इसकी दीवारें ऊंची और बहुत मोटी हैं। इसमें पत्थर का अधिक प्रयोग किया गया है। एक समय में इसको सरकारी इमारत के रूप में भी प्रयोग किया जा चुका है। उस काल में इसको केंद्रीय इमारत के नाम से जाना जाता था।
कुछ जानकारों का मानना है कि किला संगी नामक धर्मशाला को आले बुए शासनकाल में बनवाया गया था। इस हिसाब से कारवान सराय का निर्माण सन 1056 में करवाया गया था। इस धर्मशाला को बहुत ही सादे और साधारण अंदाज में बनाया गया है। इसमें कई कमरे बने हुए हैं जिनके दरवाजे आंगन की ओर खुलते हैं। कमरों के आगे लगभग 5 मीटर का दालान बना हुआ है। इस पर चारों ओर मीनारें बनी हुई हैं, जिनकी ऊंचाई 10 से 14 मीटर तक बताई जाती है। इन मीनारों को धर्मशाला की दीवारों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है।
सिल्क रोड पर बनी हुई किला संगी नामक धर्मशाला की एक विशेषता ये भी है कि इसके भीतर एक बहुत ही प्राचीन कुआं मौजूद है। लोगों का ये कहना है कि जो कुआं किला संगी धर्मशाला में बना हुआ है वो प्राचीनता की दृष्टि से लगभग 1500 वर्ष पुराना है। 40 मीटर गहरे इस कुएं की एक विशेषता ये रही है कि इसमें हमेशा पानी रहता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि किला संगी धर्मशाला के भीतर मौजूद प्राचीन कुएं में हमेशा ही 3 मीटर तक पानी रहता है।
रोबात करीमनगर के पास कई नदियां बहती हैं। इन नदियों में से कुछ तो वे हैं जो हमेशा बहती रहती हैं, जबकि कुछ अन्य वे हैं जो मौसमी नदियों की श्रेणी में आती हैं। वे नदियां जो रोबात करीम के निकट हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं: रूदेशूर, रूदखाने करज, रूदखाने फसली चाय और रूदखाने सियाब आदि। रूदखाने सियाब पर एक बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक पुल बना हुआ है और इस पुल का संबंध काजार शासन काल से है। रूदखाने सियाबक पर बने हुए पुल को पुले बाजारक के नाम से पुकारा जाता है।
पुले बाजारक के नीचे बहने वाली नदी रोबात करीम से सावे की ओर जाती है। इस पुल की एक विशेषता यह है कि बारिश के मौसम में, विशेषकर जिस दौरान बाढ़ आ जाती है, उस काल में किला संगी धर्मशाला और रोबात करीम के बीच में संपर्क का केवल यही एकमात्र मार्ग बचता है। अगर आपको ईरान के इतिहास या ईरानी वास्तुकला में रुचि है तो जब भी आपका ईरान आना हो तो इसे देखने जरूर आइएगा। आइए अब हम रोबात करीम के निकट स्थित एक अन्य धर्मशाला या कारवानसरा फतेह अली शाह के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं।
रोबात करीम के बाजारक क्षेत्र में ये स्थित है। यह धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर ही शिलालेख लगा हुआ है और उस पर इसके बनवाने वाले का नाम भी अंकित है। इसको सन 1245 हिजरी शमसी में बनवाया गया था। कहते हैं कि फतेह अली शाह के दरबार से संबंधित कमाल ने इस धर्मशाला का निर्माण करवाया था। यही वजह है कि इस धर्मशाला को हाज कमाल की धर्मशाला के नाम से भी पुकारा जाता है।
ये धर्मशाला लगभग 3500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी हुई है। इसमें 24 बड़े बड़े कमरे हैं। घोड़ों को बांधने के लिए यहाँ पर 5 अस्तबल बनाए गए हैं। 4 अस्तबल को धर्मशाला के हर कोने पर बनाया गया है, जबकि 5वां प्रवेश द्वार पर बना हुआ है। इस धर्मशाला में खाना बनाने के लिए इससे संबंधित चीजों को उपलब्ध करवाया गया है। फतेह अली शाह नामक धर्मशाला में साधारण बिल्डिंग मटेरियल का प्रयोग किया गया है।
इस धर्मशाला के एक हिस्से में टकसाल भी है, जिससे पता चलता है कि एक जमाने में यहाँ पर शायद सिक्के ढाले जाते थे। जिस समय यहाँ पर टकसाल था उस दौरान यहाँ पर बहुत ही रौनक रहा करती थी। रोबात करीम नगर में एक पंचक्की आज भी मौजूद है। इसको यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। अपनी निर्माण शैली में यह पंचक्की अद्वितीय दिखाई देती है। प्राचीन काल में जब खेतों और बागों की सिंचाई की जाती थी तो बहुत से स्थानों पर इस काम के लिए पारंपरिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ دوستو ابھی آپ کارکرم ایران برہمن ہمارے ساتھی قائم رضوی اور سواتی سے سن رہے تھے۔ اب آج کی سبھا کا انتم کارکرم جو آپ کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے اجول بھوش۔
اجول بھوش،
دوستوں کارکرم اجول بھوشیہ کی ایک انیہ کڑی کو لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں سواتی اور رویش زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج ہم آتنکواد کے خلاف ایران کی مہتوپورن بھومیکا کی چرچا کریں گے۔
دوستوں پچھلے کارکرم میں ہم نے الیکھ کیا تھا کہ سرکشا کی اودھارنا اور وبھن سیدھانتک درشٹیکوڑوں کے تحت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سرکشا کس کے لیے یا کس چیز کے لیے۔ سرکشا کے وشلیشن میں یہ سوال کئی ادھیانوں کا پرارمبھک بندو ہے۔ اسلامی کرانتی کی سفلتا کا سرکشا اور راجنیتی کا ادھیکار صرف شاہی شاسن اور اس کے درباریوں سے وشیش تھا۔ اسلامی کرانتی کی سفلتا اور اسلامی ویوستھا میں عام لوگوں کی بھاگیداری کے بعد جنتا سرکشا کا کیندر بن گئی۔ سرکار نے سب سے پہلے عام لوگوں کی سرکشا کو مضبوط بنایا۔ اس پرکار اسلامی کرانتی کی چھتر چھایا میں عام لوگ راجنیتی، پرگتی اور نیائے کا مول استمبھ بن گئے۔
امریکہ اور پشچیمی دیشوں کی اور سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد 1980 میں صدام نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران نے 8 ورشوں تک صدام اور اس کے سمرتھکوں کا مقابلہ کیا اور اس یدھ میں دشمن کو پراجت کیا، لیکن یہ دشمنی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 8 ورشی ایران عراق یدھ کے بعد مدھیہ پور میں گھٹنے والی مہتوپورن گھٹناؤں میں سے ایک داعش جیسے تکفیری آتنکوادی گٹوں کا گٹھن اور انہیں ایران اور اسلامی پرتیرود کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا تھا۔ ان گٹوں کا نیتتو امریکہ اور زائونی شاسن کر رہے تھے۔ اس کے باوجود امریکہ نے شیتر میں آتنکواد سے مقابلے کے بہانے داعش کے خلاف یدھ کا ناٹک رچا اور اس ادیشی کے لیے ایک انتراشٹری گٹھ بندھن کا بھی گٹھن کر لیا، لیکن امریکہ اور زائنی شاسن کے خفیہ سمرتھن کے کارن داعش نے بہت ہی کم سمے میں عراق اور سیریا کے ادھکانش علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی تتھا کتھت خلافت کی استھاپنا کا اعلان کر دیا۔ میڈیا نے داعش کو ایک بہت ہی شکتیشالی اور خونکار گٹ کے طور پر پیش کیا۔
داعش سنکٹ کے ویاپک پربھاؤ کے تحت ایران کی ودیش نیتی بھی اس سے پربھاوت ہوئی۔ ایران کی ودیش نیتی سیریا اور عراق میں داعش کے وناش پر کیندرت ہو گئی۔ ایران نے شیتر میں آتنکواد کے خلاف اتنی مہتوپورن بھومیکا نبھائی کہ دشمن نے بھی اسے سویکار کیا۔ حالانکہ ایران کے رنگنیتک سہیوگی کے روپ میں سیریا میں داعش کے وستار نے ایران کے لیے گہری چنتا پیدا کر دی تھی، لیکن 2014 میں عراق میں داعش کا پرویش ایران کے لیے زندگی اور موت کا مدعا بن گیا۔ داعش کے آتنکوادی لگاتار ایران کو دھمکیاں دے رہے تھے اور ایران سمیت کئی دیشوں پر قبضہ کرنے کے دعوے کر رہے تھے۔
یدھ کے میدان میں عراق کے ایک مات سمرتھک کے روپ میں ایران نے تیزی سے اپنے پڑوسی دیش کی مدد کی اور اس یدھ میں عراقی ادھیکاریوں کا منوبل بڑھایا۔ داعش کے خلاف یدھ میں عراق کی جیت میں ایران نے مہتوپورن اور نرنائک بھومیکا نبھائی۔ واسطہ میں ایران وہ پہلا دیش تھا جس نے داعش کے خلاف عراق کی مدد کی۔ سیریا اور عراق میں سنکٹ کی شروعات سے ہی ان دیشوں کی سرکاروں کے انوروھ پر IRGC کے قدس بریگیڈ کے پورو کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی نے مورچہ سنبھال لیا تھا۔ قدس بریگیڈ نے ان دیشوں کے جوانوں کی پرتیبھا کو سمجھا اور انہیں آتنکوادی گٹوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا۔ پرینام سوروپ عراق میں ہش دشابی اور سیریا میں سویم سیوی فورس کا گٹھن ہوا۔
شہید سلیمانی نے نہ صرف داعش کو جنگ کے میدان میں پراجت کرنے میں اہم بھومیکا نبھائی بلکہ تکفیری وچاردھارا اور چرمپنتی سوچ کو हराने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये एक बड़ी वैश्विक उपलब्धि थी जिससे अब विश्व एक लंबे समय तक मुक्ति पा चुका है। जनरल कासिम सुलेमानी ने सिर्फ इराक में दाइश के खिलाफ लड़ाई की कमान नहीं संभाली हुई थी, बल्कि उन्हें सीरिया के हलब में हुई लड़ाई का भी हीरो माना जाता है। सीरिया में उन्होंने दाइश की कमर तोड़ दी थी। लोगों ने हलब में दाइश की पराजय के बाद वहां के खंडरों में जनरल कासिम सुलेमानी को टहलते हुए देखा था। CIA के पूर्व अधिकारी जॉन मैकवेयर का कहना था कि सीरिया में अलकुसैर की लड़ाई के नतीजे में सीरियाई सेना ने इस रणनीतिक शहर को दाइश के कब्जे से आज़ाद करा लिया और ये आज़ादी सीरिया में युद्ध का अहम मोड़ साबित हुई। ये लड़ाई जनरल कासिम सुलेमानी की कमान में लड़ी गई थी।
जनरल सुलेमानी को सीरिया में दाइश के खिलाफ लड़ाई में ईरान और रूस के बीच रणनीतिक गठजोड़ का भी वास्तुकार माना जाता है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने जनरल सुलेमानी के बारे में लिखा था, जो लोग जनरल सुलेमानी को पसंद नहीं करते हैं वे भी उन्हें एक होशियार आदमी समझते हैं। अमेरिका के कई अधिकारी उनके काम से प्रभावित हैं और वे उन्हें देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी सेनाओं के विशेष ऑपरेशन के पूर्व कमांडर जनरल मेक क्रिस्टल ने फॉरेन पॉलिसी पत्रिका में लिखा था, आजकल सभी की नजरें जनरल सुलेमानी पर है। उनके साथी और दुश्मन सभी उनका सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से जनरल सुलेमानी मध्य पूर्व में एक शक्तिशाली खिलाड़ी हैं। सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद का उन्होंने समर्थन किया, जिसके कारण दाइश समेत समस्त विद्रोही गुटों की हार हुई।
हालांकि जनरल कासिम सुलेमानी सिर्फ मैदान के योद्धा नहीं थे, वो पूरी दुनिया में उन गिने चुने कमांडरों में से थे जो शांति को युद्ध पर प्राथमिकता देते थे। यही वजह थी कि वे क्षेत्र के कई नेताओं के विश्वास पात्र थे। उन्होंने क्षेत्र के कई देशों में राजनीतिक दलों या धार्मिक समूहों के बीच मतभेदों को हल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान में अमेरिका के पूर्व राजदूत जलमई खलील जादे ने जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में कहा था, अमरीकी अधिकारियों ने सुलेमानी पर युद्ध भड़काने का जितना आरोप लगाया वो उतनी ही अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए शांति की स्थापना में सक्रिय रहे। एक अन अमरीकी अधिकारी ने शहीद कासिम सुलेमानी के बारे में लिखा था, इस महान ईरानी जनरल के पास एक करिश्माई और प्रभावशाली व्यक्तित्व था। उसके अलावा उनके व्यक्तित्व में एक अजीब मानवीय पहलू भी है। वे बेहद विनम्र व्यक्ति थे। इस संबंध में एक पूर्व इराकी सांसद का कहना था, वे बहुत ही शांति से बात करने वाले व्यक्ति थे। बातचीत में वे तार्किक और बहुत विनम्र रखते थे। जब आप उनसे बात करते थे तो वो बहुत ही सहज रहते थे। जब तक आप उनकी शक्ति को नहीं पहचान लेते तब तक उनसे नहीं भिड़ सकते थे।
आखिरकार अमेरिका ने पहली जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के पास उन्हें और उनके कई साथियों को उस वक्त शहीद कर दिया जब वे बगदाद सरकार के औपचारिक निमंत्रण पर इराकी यात्रा पर पहुंचे थे। इराकी स्वयंसेवी बलों के उप कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस अपने कुछ साथियों के साथ उनका स्वागत करने बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उनके साथ गाड़ी में वापस लौट रहे थे। इसी समय अमेरिका के ड्रोन विमानों ने उनकी गाड़ियों पर मिसाइल दागे और देखते ही देखते दोनों गाड़ियों के परखचे उड़ गए और उनमें आग लग गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक रूप से जनरल सुलेमानी की हत्या का आदेश देने की बात स्वीकार की थी, लेकिन यह यहां बिंदु उल्लेखनीय है कि जनरल सुलेमानी की मौत उनकी शख्सियत का अंत नहीं थी, बल्कि उसके बाद से उनकी शख्सियत एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत बन गई। ज़ायोनी शासन के अलावा दुनिया की किसी भी सरकार ने जनरल सुलेमानी की हत्या का समर्थन नहीं किया था।
दोस्तों, रशिया टुडे ने लिखा था कि ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में भाग लिया। मिस्र की अल एहराम वेबसाइट ने भी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की शव यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शव यात्रा याद आ गई। ईरान में 1 जनवरी की तारीख को वैश्विक प्रतिरोध दिवस के रूप में दर्ज कर लिया गया है। उनकी शव यात्रा में करीब 2.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। आज जनरल कासिम सुलेमानी का नाम ईरान और विश्व भर में पहले से ज़्यादा प्रसिद्ध है। जनरल शहीद कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश निश्चित रूप से अमरीकी राष्ट्रपति का मूर्खतापूर्ण कृत्य माना जाता है, क्योंकि इस तरह से अमरीका ने जनरल कासिम सुलेमानी को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, जिन्हें प्रतिरोधी जगत हमेशा याद रखेगा। आज शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के मिशन को उनके हाथों से प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिरोध के दूसरे कमांडर आगे बढ़ा रहे हैं, और ये मिशन अपना लक्ष्य प्राप्त करने तक इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। आज सुलेमानी और उनकी विचारधारा एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा में बदल गई है।
तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत से पहले हम आपकी सेवा में एक बार फिर आज के मुख्य समाचारों का सारांश पेश करते हैं। ईरान में हालिया दिनों में होने वाले दंगों पर सुप्रीम लीडर का बयान, हंगामों की बिसात यकीनन समेट दी जाएगी। ईरान में होने वाले आतंकी हमलों पर पश्चिमी देशों की चुप्पी, आतंकवाद के फलने फूलने का कारण ईरानी विदेश मंत्रालय। परमाणु समझौते में अमरीका रुकावट पैदा कर रहा है रूस। अफगानिस्तान को आतंकवादियों का सुरक्षित स्थल नहीं बनने देना चाहिए भारत। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। तो हमें अगली सभा तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।